हॉल में कुछ ही देर बाद फिर हलचल बढ़ गई। मुख्य दरवाजे से एक साथ कई आवाजें आती सुनाई दी, हंसी, कदमों की आहट और हैप्पी होली की गूंज। आर्यन, अदिति, शकुंतला, रम्या और विशाल अंदर आए। सबके हाथों में हल्का सा गुलाल था, चेहरे पर त्योहार की चमक, लेकिन माहौल की परतों के नीचे बहुत कुछ अनकहा था। रत्ना देवी ने जैसे ही उन्हें देखा, चेहरा फिर से खिल उठा। आ गए तुम लोग? सुषमा देवी ने थाली उठाई। इस बार उन्होंने बिना किसी हिचक के सबको पास बुलाया। सबसे पहले विशाल आगे बढ़ा। उसने झुककर रत्ना देवी के पैर छुए। हैप्पी होली नानी। रत्ना देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा, गुलाल उसके माथे पर लगाया। खुश रहो, हमेशा मुस्कुराती रहो। रम्या भी झुक गई। आशीर्वाद दीजिए नानी। सुषमा देवी ने उसके गाल पर हल्का रंग लगाया और कहा, सदा खुश रहो बेटा। आर्यन और अदिति भी आगे आए। दोनों ने औपचारिकता से पैर छुए। दोनों के चेहरे पर हल्की झिझक थी, जैसे भीतर बहुत कुछ चल रहा हो। कुछ ही पलों में माहौल फिर रंगों से भर गया। ढोल की आवाज़ गार्डन एरिया से साफ सुनाई दे रही थी। गार्डन एरिया, हवेली का बड़ा बगीचा आज असली रंगों का मैदान बना हुआ था। हरे लॉन पर गुलाल की परतें बिखर चुकी थीं। एक तरफ टेबल पर गुजिया, ठंडाई और स्नैक्स सजे थे। बच्चे दौड़ रहे थे। पड़ोसी और रिश्तेदार सब एक दूसरे को रंग लगा रहे थे। रत्ना देवी, सुषमा देवी और शकुंतला एक साइड में रखी कुर्सियों पर बैठ गईं। उनके सामने पूरा दृश्य था, हंसी, भागदौड़, रंगों की उड़ान। रत्ना देवी की आंखों में चमक थी। देखो तो, कितना अच्छा लगता है जब घर भरा हो। सुषमा देवी ने हल्की मुस्कान दी। बस ये खुशियां बनी रहें। शकुंतला चुप थी। उनकी नज़र कभी बच्चों पर जाती, कभी जमीन पर। विशाल ने पीछे से आकर रम्या के गाल पर नीला रंग लगा दिया। पहले मैं, रम्या चीखी, भैया, और तुरंत उसने मुट्ठी भर गुलाल उसके चेहरे पर मल दिया। दोनों की हंसी बगीचे में गूंज गई। उनके कुछ कजिन भी आ गए और सब एक दूसरे पर रंग फेंकने लगे। बस शोर, हंसी और भागना। रत्ना देवी उन्हें देखती रहीं, आंखों में सुकून। भीड़ के बीच अदिति धीरे धीरे आर्यन की ओर बढ़ी। उसके हाथ में गुलाबी गुलाल था। वह कुछ पल उसे देखती रही, शायद किसी पुराने अधिकार की याद में। आर्यन, उसने धीमे से कहा। आर्यन मुड़ा। उसके चेहरे पर पहले से ही हल्का रंग लगा था। अदिति ने हाथ उठाया। उसके गाल तक पहुंचने ही वाला था कि आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया। हल्के लेकिन साफ शब्दों में बोला, हमारे बीच अब कुछ नहीं है। अदिति की आंखें फैल गईं। आर्यन की आवाज़ ठंडी थी, लेकिन कांप नहीं रही थी। ये अधिकार तुमने खो दिया है। पास खड़े कुछ लोग रुक गए। ढोल की आवाज़ जैसे एक पल के लिए दूर हो गई। अदिति का हाथ हवा में ही रुक गया। आर्यन ने उसका हाथ धीरे से नीचे किया और बिना कुछ और कहे मुड़ गया, सीधे हवेली के अंदर, सीढ़ियों की तरफ। भीड़ फिर हिलने लगी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन सबने देखा। अदिति वहीं खड़ी रह गई। उसके हाथ की मुट्ठी में गुलाल अब भी भरा था। मन में उबाल था। आर्यन, तुमने सबके सामने मेरा मजाक बना दिया। इतना गिर जाओगे सोचा नहीं था। उसकी आंखों में पानी नहीं था, बस चोट थी। उसी समय गार्डन के गेट की ओर हलचल हुई। एक आदमी अंदर आया, सादे कपड़े, चेहरे पर संकोच और हाथ में छोटा सा रंग का पैकेट। शकुंतला की नज़र उस पर पड़ी और उनका चेहरा सख्त हो गया। वह उनके पति थे। उन्होंने सीधे आकर पहले सुषमा देवी और रत्ना देवी के पास कदम रोके, झुके, उनके पैरों के पास हल्का सा गुलाल लगाया और हाथ जोड़कर पैर छुए। होली मुबारक, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। रत्ना देवी ने बिना मुस्कुराए उन्हें देखा। यहाँ कैसे? सुषमा देवी ने भी ठंडी आवाज में पूछा। किसने बुलाया? उन्होंने सिर झुकाए ही जवाब दिया। आज होली है, सोचा बच्चों से मिल लूं। शकुंतला अब तक खड़ी हो चुकी थी। उनकी आंखों में गुस्सा साफ था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। रम्या ने जैसे ही पिता को देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। पापा! वह दौड़कर उनके गले लग गई। विशाल भी पीछे पीछे आ गया और पिता को पकड़ लिया। कुछ पल के लिए वह आदमी बस बच्चों को थामे खड़ा रहा, जैसे वही उसका असली त्योहार हो। लेकिन तभी शकुंतला की नज़र उन पर पड़ी। वह नज़र सख्त, ठंडी और चेतावनी से भरी। रम्या ने धीरे धीरे अपनी पकड़ ढीली की। विशाल भी एक कदम पीछे हट गया। पिता के चेहरे पर हल्की चोट सी आई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। गार्डन में अचानक एक ठहराव आ गया। ढोल फिर बज रहा था, लोग फिर रंग खेल रहे थे, लेकिन इस छोटे से घेरे में समय जैसे थम गया था। रत्ना देवी ने गहरी सांस ली। आज का दिन है, झगड़े का नहीं, लेकिन उनकी आवाज में अपनापन नहीं था। शकुंतला ने बच्चों को अपने पास बुला लिया। चलो अंदर चलो। उनके पति वहीं खड़े रहे, हाथ खाली, चेहरा शांत, लेकिन आंखों में बहुत कुछ दबा हुआ। अदिति दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उसके अपने दर्द के बीच ये दृश्य उसे और भी भारी लगने लगा। उधर ऊपर कमरे में आर्यन खिड़की से नीचे देख रहा था। उसने अपने फूफा जी को देखा, बच्चों को देखा और शकुंतला के चेहरे की कठोरता भी। उसने नजरें फेर ली।
नीचे बगीचे में रंग उड़ रहे थे, लेकिन रिश्तों के बीच की दरारें साफ दिख रही थीं। होली का दिन था, रंग सबके चेहरे पर थे, पर दिलों के रंग अलग अलग थे। रम्या ने माँ का हाथ पकड़ लिया, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज अब भी विनती भरी थी। माँ प्लीज, आज होली है, हमें पापा के साथ रहने दो ना, सिर्फ आज के लिए। शकुंतला का चेहरा पत्थर सा हो गया। मैंने कहा ना, इस आदमी से हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा, ये बात अच्छे से समझ लो तुम दोनों। रम्या ने सिर हिलाया, जैसे वह इस जवाब को मानने को तैयार नहीं थी। पर हमारे लिए तो है ना, हमारे पापा हैं। विशाल भी आगे बढ़ाया, उसकी आवाज में अब बचपना कम ठहराव ज्यादा था। माँ ये गलत है, आप दोनों का जो भी है, पर वो हमारे पापा हैं, हमें उनसे मिलने से क्यों रोक रही हैं। शकुंतला की आंखें एक पल के लिए डगमगाईं, लेकिन तुरंत सख्त हो गईं। तुम नहीं जानते क्या किया है इन्होंने। अब तक चुप खड़े पिता ने धीमे से कहा, बच्चों को मत रोको शकुंतला, आज का दिन है। रम्या ने फिर उनका हाथ पकड़ लिया। बगीचे में रंग उड़ रहे थे, पर इस छोटे से घेरे में फैसले हवा में ठहरे हुए थे।